तो ओंकार के विषय में विचार कर रहे थे। ध्याता, ध्यान और ध्येय, अब इन तीनों की ओंकार रूपता का प्रतिपादन करते हैं। सर्वकर्णानि संप्रतिष्ठाप्य ध्यानं विष्णुः प्राणं मनसि सह कर्णैः मनसि संप्रतिष्ठाप्य ध्याता रुद्रः प्राणं मनसि सह कर्णैर्नादान्ते परमात्मनि संप्रतिष्ठाप्य ध्यायीत ईशानं प्रध्यायितव्यम्। ध्यान विष्णु है, ध्याता अर्थात ध्यान करने वाला रुद्र है, और ध्येय ध्यायितव्य जिसका ध्यान करना है वह ईशान है। इस प्रकार ध्याता, ध्यान और ध्येय का स्वरूप ओंकार स्वरूप है। संसार में जहां कहीं चाहे कर्म हो चाहे ज्ञान हो चाहे इच्छा हो, ये सर्वत्र त्रिपुटी में मिलते हैं। पुट का मतलब होता है बिना तीनों मिले हुए एक भी सिद्ध होता नहीं। यद्यपि तीनों अलग अलग हैं और प्रतीत होते हैं, परंतु तीनों मिलकर के ही सिद्ध होते हैं, कोई एक चीज अलग से मिलती नहीं। जहां भी ज्ञान होगा वहां जानने वाला जरूर होगा। अगर कहा जाए ज्ञान है और जानने वाला नहीं तो ये नहीं हो सकता। और ज्ञान का विषय भी जरूर होगा, ज्ञेय भी जरूर होगा, कोई चीज है जिसको जाना जा रहा है। ज्ञाता और ज्ञेय ज्ञान के साथ सदा ही सिद्ध है। इसी प्रकार से यदि कुछ भी करोगे, क्रिया होगी, कर्म होगा, तो कोई न कोई करने वाला जरूर होगा, कर्ता जरूर होगा। बिना करने वाले के क्रिया सिद्ध नहीं होगी। और वो क्रिया किसी न किसी चीज के ऊपर की जाएगी। अगर तुमको घड़ा बनाना है तो मिट्टी के ऊपर कुछ न कुछ क्रिया करोगे। मिट्टी में कोई न कोई परिवर्तन ला करके उससे घड़े को सिद्ध करोगे। तो जहां भी क्रिया होगी, कर्म होगा, वहां कोई करने वाला होगा। किसी चीज को लेकर के क्रिया करके कुछ संपन्न किया जाएगा। चीज के ऊपर काम करने का मतलब है कि उस चीज के अंदर कोई परिवर्तन लाया जाएगा। परिवर्तन के प्रकार पहले बतलाए हैं, कोई चीज उत्पन्न करोगे, कहीं पहुंचोगे, किसी चीज को सुधारोगे, किसी चीज के किसी हिस्से को हटाओगे, यही चार क्रिया के फल है। इसी प्रकार यदि इच्छा होगी तो इच्छा का कोई न कोई विषय होगा, किसी न किसी चीज की इच्छा होगी और कोई न कोई इच्छा करने वाला होगा। ज्ञान बिना ज्ञाता ज्ञेय के नहीं, क्रिया बिना कर्ता के और विषय के नहीं। इच्छा बिना किसी इच्छा करने वाले के, बिना किसी इष्ट पदार्थ के इच्छा नहीं। इस त्रिपुटी को ओंकार की अकार उकार मकारात्मक त्रिपुटी रूप से बतला रहे हैं। यद्यपि ये त्रिपुटी सर्वत्र होती है, परंतु यह त्रिपुटी दो प्रकार से हो सकती है, एक विद्या सृष्टि, एक अविद्या सृष्टि। है दोनों ही अज्ञान हो, विद्या भी अज्ञान है, अविद्या भी अज्ञान है, परंतु दोनों की अज्ञान रूपता होने पर भी दोनों में कुछ फर्क है, ऐसे समझ लो। तुम दिल्ली के रहने वाले हो, दिल्ली से बंबई तक की एक सड़क है, सड़क तो एक ही है दिल्ली से बंबई जाने की, परंतु उस सड़क के ऊपर दो तरह से चल सकते हो। बंबई की तरफ मुंह करके चल सकते हो, अथवा बंबई या किसी भी रास्ते से दिल्ली की तरफ मुंह करके चल सकते हो। ठीक से समझ गए भाई, दिल्ली और बंबई की सड़क एक ही है। बंबई की तरफ मुख करके चलोगे तब भी उसी सड़क पर चलोगे और वही शहर, वही बाजार, वही मोड़ आएंगे। और अगर दिल्ली की तरफ मुंह करके चलोगे तो भी वही शहर, वही मोड़, वही बाजार आएंगे। सड़क एक, मिलने वाली चीजें एक, परंतु फल में भेद है। बंबई की तरफ मुंह करके चलोगे तो बंबई पहुंचोगे, दिल्ली की तरफ मुंह करके चलोगे तो दिल्ली पहुंचोगे, ये फल का भेद है। ठीक इसी प्रकार अज्ञान तो एक ही है। इसमें जितने व्यवहार करोगे वो सब अज्ञान रूप ही हैं, वही चीजें आनी हैं। परंतु किधर को मुंह करके चल रहे हो? यदि आत्मा की ओर मुंह करके चल रहे हो तो रास्ते में चीजें तो वही आएंगी, परंतु संसार बंधन की निवृत्ति होगी। अगर अनात्मा की तरफ मुख करके चल रहे हो तब भी सड़क अज्ञान की वही है, मोड़ भी वही आएंगे, सभी चीजें वही आएंगे। परंतु अनात्मा की ओर मुंह करके चलोगे तो संसार बंधन बढ़ता जाएगा। इसीलिए आचार्य मधुसूदन सरस्वती गूढ़ार्थ दीपिका में लिखते हैं, आत्मा को उद्देश्य करके प्रवृत्ति की जाती है, वह भी वस्तुतः निवृत्ति है। अनात्मा को उद्देश्य करके जो निवृत्ति की जाती है वह भी वास्तुतः प्रवृत्ति ही है। आत्मा को उद्देश्य करके प्रवृत्ति करते हो, परमात्मा के प्राप्ति की दृष्टि से तीर्थ यात्रा करते हो, दान करते हो, यज्ञ करते हो, ये सब प्रवृत्तियां हैं। परंतु ये सब मन को शुद्ध करके मोक्ष के कारण बन जाते हैं। अनात्मा को विषय करके, बच्चा नहीं है, बच्चा हो जाए, मुकदमा चल रहा है, मुकदमा जीत जाए, तबीयत ठीक नहीं रहती है, तबीयत ठीक हो जाए, व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, व्यापार ठीक हो जाए, परीक्षा की तैयारी ठीक नहीं है, परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाए, इन उद्देश्यों से तप करते हो, तप में निवृत्ति है। व्रत रखते हो, व्रत में निवृत्ति है। किसी चीज को छोड़ते हो, बढ़िया सुंदर पलंग पर नहीं सो करके जमीन पर सोते हो, सर्दी के मौसम में गंगा जी में जाके गोता लगाते हो, गर्मी के मौसम में पंचाग्नि तपते हो, निर्जला एकादशी के दिन पानी भी नहीं पीते, ये सब निवृत्ति है। परंतु उद्देश्य तुम्हारा अनात्मा होने से ये सब प्रवृत्ति ही है। तो इसलिए आचार्य मधुसूदन सरस्वती कहते हैं, आत्मा के उद्देश्य से की जाने वाली प्रवृत्ति भी निवृत्ति है, अनात्मा के उद्देश्य से की जाने वाली निवृत्ति भी प्रवृत्ति ही है। इसलिए क्या करते हो ये नहीं, किस उद्देश्य से करते हो, इससे भेद आता है। साधक को संबोधन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं, उपमाता च माता च बालमात्र द्वयम् हिते। कहते हैं हे साधक, हे बालक, साधक बालक ही होता है। बल का अर्थ क्या बतलाया था? राग द्वेष से रहित होना ही बल है। साधक राग द्वेष से रहित नहीं है, इसलिए बलहीन है। उपनिषद कहती है नायम आत्मा बलहीने न लभ्यः, यह आत्मा बलहीन के द्वारा प्राप्त नहीं होता। तो बलहीन का मतलब क्या? जो 500 दंड 1000 बैठक नहीं कर सके वो क्या आत्मा की प्राप्ति केवल पहलवानों को ही होगी अथवा जवानों को ही होगी? बुड्ढों में तो ये सब बल होना नहीं है। आचार्य शंकर ने स्पष्ट किया, बल से तात्पर्य है राग द्वेष रहित होना। इसलिए साधक को संबोधन करके कहते हैं बाल मात्र द्वयम हिते, हे बाल हे बालक, तुम्हारी दो माताएं हैं, एक तो तुम्हारी अपनी माँ है और एक सौतेली माँ है, उपमाता है। अब सौतेली माँ में और अपनी माँ में फर्क होता है। सौतेली माँ बच्चा मेरी तरफ ज्यादा खींच के रहे, इसलिए उसको क्षणिक सुख दे देती है। बच्चा कहता है मुझे चॉकलेट खिलाओ, सौतेली माँ सोचती है नहीं खिलाऊंगी तो लोग कहेंगे देखो थोड़ी खिलाएगी, सौतेली है ना। जानती है दांत के लिए चॉकलेट खराब है, फिर उसको चॉकलेट खिला देती है। बच्चा कहता है मुझे खेलने जाना है, जानती है दो दिन बाद इम्तिहान है इसको पढ़ना चाहिए, परंतु सौतेली माँ सोचती है अगर ऐसा करूंगा तो ये हल्ला मचाएगा, लोग कहेंगे माँ सौतेली है ना। इसलिए बच्चे के परम हित को उपमाता जो सौतेली माता है वो नहीं समझती या तद अनुकूल आचरण नहीं करती। इसी प्रकार यहां पर जो उपमाता है वह अविद्या है। जरा मरण संसर्गी चित्त द्वैतरसात्मक, ये जो उपमाता है अविद्या है ये चित्र द्वैतरसात्मक, चित्र भिन्न भिन्न प्रकार के द्वैत के रसों को इसको खिलाती रहती है। संसार ये सारा उत्पन्न वही करती है। पहले बतलाया था एक है स्त्री शरीर और दूसरे उसके अंदर तरह तरह की भावनाएं, ये तरह तरह की भावनाएं अविद्या उत्पन्न करती है। चित्र द्वैत रसात्मक, ये जो मन की तरह तरह की भावनाएं हैं, सारा रस इन्हीं में है। वो जितनी जितनी ये भावनाएं प्रबल होती हैं, उतना ही उतना द्वैत में रस आता है। और जीव को बड़े आनंद का अनुभव होता है। है वो क्षणिक आनंद, टिकता नहीं है, परंतु नहीं टिकने पर भी चित्र द्वैत रसात्मक है, वह रसात्मक सुख देता है। जैसे बच्चे को चॉकलेट खिलाना सुख देता है, परंतु फल क्या है तो जरा मरण संसर्गी, बुढ़ापा मृत्यु इत्यादि सब लाने वाला यही है। परंतु बालक छोटा होने से जानता नहीं। मां कहती है चॉकलेट नहीं मिलेगा, वो तो बच्चे का हित चाहती है। मां कहती है खेलने नहीं जाने देंगे, वो तो बच्चे का हित चाहती है। दो दिन के बाद इम्तिहान है, इसलिए बच्चा समझता है ये मेरा हित नहीं चाहती। अब जो माता है, जन्म रोग जरा ध्वंसी, सकृत पीतोपि मृत्युजित, जो इसकी असली मां है, वो इसको जो पिलाती है वो कैसा है तो सकृत पीतोपि। सकृत माने एक बार, एक बार भी यदि उसको वह पी लेता है तो मृत्युजित, मृत्यु को जीत लेता है। क्योंकि वो जो चीज दे रही है वो कैसी है तो जन्म रोग जरा ध्वंसी। जन्म रोग और जरा ये सब होते हैं शरीर प्राप्ति पर, उस शरीर से ये हटा देती है, इसका ध्वंस कर देती है। विद्या के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो सकृत भी तो भी, एक बार भी परमात्मा का ज्ञान हो जाए तो फिर कभी जन्म मृत्यु जरा व्याधि हो नहीं सकती। परंतु बालक इस बात को समझता नहीं। कई लोगों के मन में शंका होती है, ये इतना बड़ा संसार है, यदि इस संसार की तरफ हम नहीं देखेंगे तो ये संसार कैसे चलेगा। ठीक है परमात्मा की तरफ तो जाएं, परंतु परमात्मा ने ये संसार बनाया है तो ये संसार भी तो चलना चाहिए। हम इधर ध्यान नहीं देंगे तो संसार खत्म हो जाएगा, उपमाता मर जाएगी। इसलिए सृष्टि के प्रति करुणा के कारण हम इस सृष्टि की रक्षा कर रहे हैं। शास्त्रकार कहते हैं साविदीर्य म्रियेति चेत, ये सबको दुख देने वाली अगर मर भी जाए तो कोई हर्जा नहीं है। संसार नहीं चलेगा तो किसका नुकसान होना है? तो जो विचारशील है वो तो संसार के सारे कार्यों को करते हुए दृष्टि किधर रखता है, मैं आत्मा की तरफ बढ़ रहा हूं या नहीं। जैसा शुरू में बतलाया सड़क ये कही है, इसलिए दोनों ही लोग एक ही चीजों को करते हुए दिखेंगे। क्रिया अलग नहीं है, वही सड़क है, वही बाजार आने हैं। केवल फर्क क्या है कि किस तरफ मुख करके चल रहे हो। इसी प्रकार यह सारे संसार के व्यवहारों को करता है, परंतु इसकी दृष्टि केवल आत्मा की तरफ है। अनात्म पदार्थ की प्राप्ति हो न हो इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान ने इसीलिए गीता में गिना भी दिया, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। भगवान ने कहा कि अनात्म पदार्थ मिलकर के या सुख देते हैं या दुख देते हैं। शरीर को प्रिय लगने वाले पदार्थ मिल गए तो सुख होता है, शरीर को अप्रिय लगने वाले पदार्थ मिल गए तो दुख होता है। जिस अनात्म पदार्थ को हम चाहते हैं वो मिल गया तो लाभ है, और जिस अनात्म पदार्थ को हम चाहते हैं वो हमसे दूर चला गया तो अलाभ है। जिस चीज को हम अपने वश में करना चाहते हैं वो हमारे वश में हो गई तो जय है, और हम उसको वश में नहीं कर पाए तो पराजय है। अब भगवान कहते हैं सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। तो प्रश्न उठता है कि किसी न किसी उद्देश्य के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। अविद्या काम कर्म, बिना कामना के कर्म हो ही नहीं सकता। महाराजा मनु कहते हैं बिना कामना के कर्म न देखा जाता है न सुना जाता है। अकामस्य क्रिया काचित् अकाम कामना से रहित जो है उसकी क्रिया न देखी जाती है न सुनी जाती है। सुनी जाती नहीं है क्योंकि शास्त्र जब कर्म करने को कहता है तो साथ में बतला देता है इस कर्म का ये फल है।